गीता में आया है कि ये मेरा अंश है और मना मन है सदा जिसमें इंद्रियों को ये खेचता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अंश तो मेरा है और पकड़ा है प्रकृति के अंश को। अब ये प्रकृति के अंश अगर छोड़ दे तो मुक्त हो जाए और मेरे चरणों के शरण आ जाए तो मुक्त हो जाए। मेरे से विमुख और प्रकृति को पकड़ता है, इससे जन्मता मरता है, दुख पाता रहता है। तो प्रकृति की चीज है वो संसार को दे दिया है। संसार का कार्य है, प्रकृति का कार्य संसार है। इस संसार की सेवा में संपूर्ण चीज दे दी जाए जो कि प्रकृति की है, तो इनको दे दी जाएगी तो आप निरा रह जाएगा। और विवेक विचार के द्वारा इनका त्याग कर दिया जाए तो अपना निरा रह जाएगा। और एक प्रभु के युद्ध चरणों के शरण हो जाए तो निहाल हो जाएगा। मानो चाहे जड़ चेतन का विवेक करके चिन्मय स्वरूप में सिद्ध हो जाओ और चाहे संसार की सेवा करने में मात्र जितने प्रकृति की चीज संसार की सेवा में लगा दो और चाहे शरण हो जाओ, तो संसार की चीज संसार की सेवा में लगा देना कर्मयोग हो गया और इनसे अलग और अपने स्वरूप में सिद्ध हो गया ज्ञान योग हो गया और प्रभु के चरणों के शरण हुआ ये भक्ति योग हो गया। अब तीनों में से जिसके जो बात ठीक पड़े उसको कर लो, नतीजा एक हो जाएगा। ये जो परिवर्तनशील प्रकृति का कार्य प्रकृति है, इसके साथ संबंध रखने से अपने को ये आफत भोगनी पड़ती है, क्योंकि ये नाशवान इसको पकड़ेगी तो ठहरेगा नहीं। अरे स्वयं जीव अविनाशी, चेतन अमर स्वयं शुभ राशि, स्वयं जीव अविनाशी है, तो अविनाशी और विनाशी को पड़ेगा, विनाशी टिकेगी नहीं। अरे अविनाशी अपने स्वरूप में सिद्ध न हो और विनाशी को चाहता रहेगा तो ये तो नष्ट होती रहेगी, ये चाहता रहता रहेगा तो ये जीव तो मिटेगी नहीं कभी। अनंत युग बीत जाएगी तो मिटेगी है नहीं। जड़ता का पिंड छुड़ा ले, जड़ता से उसको छोड़ दे तो निहाल हो जाए। तो ये प्रकार है तीन छोड़ने का। तो संसार मात्र की सेवा में लगा दे, सभी सेवा के लिए ये अपने लिए है ही नहीं। उत्पत्ति और विनाश जिसका होता है वो तत्व तो हमारे लिए नहीं है। सीधी बात है, बहुत सरल, एकदम ठीक तरह से विचार किया जाए तो परिवर्तनशील है प्रकृति, प्रकृति का कार्य, इससे विमुख होना है। तो विमुख होने में सब संसारी सेवा ही सेवा ही सेवा करते चले जाए तो जड़ता का संबंध विच्छेद होने पर चिन्मयता स्वतः असंगता का अनुभव हो जाएगा। और विचार विवेक के द्वारा जड़ता का त्याग कर सिद्ध हो जाएगा तो अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाएगी और इससे संसार से विमुख और भगवान के सन्मुख हो जाए तो प्रभु के प्रेम प्राप्त हो जाएगा, आदमी हाल हो जाएगा। ये खास बात है, इसमें कोई किसी की शंका हो तो बोलो। ऐसी
उत्तम
दर्शन
के लिए कौन सा साधन हमारा है? उत्तम साधन कौन सा रहेगा?
उत्तम साधन अधिकारी के प्रति होता है। अधिकारी जैसा होता है उसके लिए उत्तम होता है। देखो भूख एक होती है और भोजन करने पर तृप्ति एक होती है, परंतु भोजन की रुचि एक नहीं होती। ऐसे ही साधन जब तक नहीं करते संसार में भटकते हैं, सुख पाते हैं, तब दुख एक है और परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर तृप्ति एक है, परंतु साधन की रुचि अलग अलग होती है। तो वो साधन करने से तृप्ति एक होगी तो वो रुचि एक होती, वो सबके लिए एक भोजन नहीं होता, भोजन रुचि के अनुसार होता है। ऐसे साधना में ये मैंने तीन बताए, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इसमें जिसके जो रुचता है, जिस विषय की रुचि हो और उसमें योग्यता हो और उस साध्य में साधन तत्व में प्रीति हो, वो उसके लिए बढ़िया होता है। जिसकी सेवा करने की रुचि है, दूसरों को सुख पहुंचाने की रुचि है, हरेक का हित कैसे ऐसी रुचि है, उसके लिए कर्मयोग ठीक है। और जिसका विचार विवेक के मन लगता है, सेवा के काम मन नहीं लगता, परंतु तत्व क्या है ऐसी जिज्ञासा जोरदार है, विचार करता है, उसके लिए ज्ञान योग बढ़िया है। और जिसके भी ये कोई मालिक है, उसे शरण हो जाए, हमारे दिन जो होते नहीं, ये ना होते ये ना कर पुकारता है, उसके लिए भक्ति योग श्रेष्ठ है। ये रुचि अलग होती है ना, रुचि के अनुसार होता है, रुचि होनी चाहिए और उसमें उसी बात की योग्यता होनी चाहिए और उसमें विश्वास होना चाहिए। रुचि, विश्वास, योग्यता, तीन चीज जिसमें होगी उसके लिए वही साधन ठीक होगा। कर्मयोग की रुचि है और उसकी योग्यता भी है और वो तत्परता से कर सकता है, ऐसा उसका भाव है, तो कर्मयोग ठीक होगा। रुचि चाहिए और योग्यता चाहिए और क्या कहा है, विश्वास चाहिए, ये तीन चीज चाहिए। तो सबकी सेवा से ठीक हो जाएगा, ये विश्वास चाहिए और सेवा की रुचि चाहिए और सेवा करने की योग्यता, ये तीन चाहिए। ऐसे ही ज्ञान योग में स्वाभाविक रुचि जड़ता से ऊंचा उठने की हो और उतनी योग्यता हो, मन वैराग्य हो तेजी का संसार से, रुचि भी वैसी हो और योग्यता भी वैसी हो, और तीसरी क्या, विश्वास हो कि ये विवेक है इससे हमारा कल्याण हो जाएगा, ये विश्वास हो तो ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ होगा। ऐसे ही भगवत भजन में, कीर्तन में, भगवत कथा में रुचि हो और योग्यता हो। योग्यता इसमें क्या चाहिए, इसमें योग्यता एक तरफ होने की चाहिए, भगवान की तरफ ही होना है, हम संसार की तरफ नहीं, ये उनकी रुचि हो, योग्यता भी ऐसी संसार का त्याग कर सके। और तीसरी चीज क्या, विश्वास हो भगवान पर, विश्वास हो जाए भगवान सब कुछ करेंगे, तो उसी की भक्ति योग बढ़िया है। साधारण रीति से देखा जाए तो ज्यादा लोग भक्ति के अधिकारी होते हैं। कारण क्या है कि संसार की अत्यंत आसक्ति है, वे पुरुष अगर कल्याण चाहते हैं तो कर्मयोग के अधिकारी होते हैं, और अत्यंत विरक्त होते हैं वे कल्याण चाहते हैं तो ज्ञान योग के अधिकारी होते हैं। और न तो अत्यंत आसक्ति है और न अत्यंत भगवान में प्रेम है, ऐसे बीच के होते हैं, उनके लिए भक्ति योग बढ़िया है। तो प्राय भजन ध्यान में लगे वो बीच के आदमी होते हैं, संसार छूटता नहीं और परमात्मा भजन भी करना चाहते हैं, ऐसे के लिए भक्ति योग बढ़िया है। ये बात
हाँ जी, एक तो मुख्य
रूप में चलेगा, दो बाकी गौण रूप में चलेगा। दो गौण का से रहेंगे, एक मुख्य रहेंगे, ठीक है।
भक्ति प्रदान कर्मयोग,
हाँ तो भक्ति प्रदान कर्मयोग में भक्ति हो जाएगी, कर्मयोग गौण हो जाएगा, भक्ति मुख हो जाएगी। हाँ, तात्पर्य ये लिया जाए कि जिस तत्व के परमात्मा है उसी तत्व का स्वयं है, ये खंड का जैसा नहीं है, इस बात को मैंने खंडन नहीं कहा, मैंने कहा तत्व एक है, जैसे आकाश है सामान्य और एक घड़े के भीतर एक मकान के भीतर अवकाश है, ये तत्व से दो नहीं है, सामान्य आकाश वही है, पर घटाकाश कहा जाए घड़े के कारण से वो अंश कहा जाता है, घड़े में आवृत होने से उसको अंश कह देते हैं। तत्व एक है, ऐसे परमात्मा चेतन तत्व है, ऐसे ये भी चेतन परम ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि। तो चेतन अमल सहज सुख राशि ये सच्चिदानंद हुआ। तो तत्व एक है, अंश कब तक है कि जब तक जड़ चीज को इसने पकड़ा है, शरीर को मैं और मेरा मानते हैं तब तक ये अंश है, और इसको त्यागने के बाद में उसका स्वरूप हो जाता है। तो स्वरूप हो क्या जाता है, स्वरूप तो है ही, बंदो विषय स्नेह ते ताते कहिए जीव अलग अजूनी आप है हरियाण्य रोपी। जैसे मनुष्य मनुष्य सब एक है, उन मनुष्यों में से जो राज की नौकरी स्वीकार कर लेता है उसको हम कहते हैं राज का सिपाही। तो सिपाही और मनुष्य दो नहीं है, वो मनुष्यों ही से मनुष्य है, परंतु राज की नौकरी स्वीकार करने से सिपाही कहलाता है, उसे चपड़ाल पहन ली और वो छोड़ देते ही मनुष्य हो जाता है, मनुष्य तो है ही हो गया जाता है, वो चपड़ाल पहन ही इस बार से मनुष्यों में अलग हो गया, ये राजा सिपाही है साहब, सिपाही कुछ नहीं है, तो वो मनुष्य मनुष्य ही। ऐसे पदार्थों के साथ संबंध जोड़कर संसार से सुख चाहता है तब तक ये जीव है, दुख पाता है, सुख तो चाहता रहता है दुख पाता रहता है, ये दिन मिटेगी नहीं कभी, और इससे अगर छोड़ अलग हो जाए तो निहाल हो जाए, ये बात।
सकाम करते करते कभी निष्काम, निष्काम करते करते सकाम की भी इच्छा हो जाती है, जिसमें तकलीफ
सकाम की इच्छा होती है, निष्काम हुआ ही नहीं अभी तक, निष्काम सर्वता होने पर सकाम इच्छा नहीं होती, सकाम रहते हुए निष्काम भाव लाते हैं, ये अवस्था है, तो इसमें निष्काम भाव लाते लाते निष्कामता हो जाएगी, फिर सकाम नहीं होगा। सकाम जब तक होता है तब तो भीतर में सकाम भाव तो है, निष्काम भाव को लाते हैं जान जान करके, तो वो जाते होते निष्काम सर्वता होने पर फिर सकाम नहीं होगा। मन दुखदायी चीज को छोड़ेगा तो तब तक छोड़ने में कठिनता पड़ती है, दुखदायी में सुख का भान होता है, और सर्वथा दुखदायी स्पर्ति होने पर छोड़ जाएगी। तो सकाम भाव में ही दुख है, जितने संसार में दुख है वे बिना सकाम भाव के हो ही नहीं होता, कोई से दुख नहीं हो सकता, किंचित मात्र भी नहीं हो सकता, दुख सबके सब संयोग जन्य सुख की इच्छा के ऊपर अटके हुए हैं, संयोग जन्य सुख की लालसा है, इस लालसा के ऊपर ही दुनिया मात्र का दुख है, तो लालसा छूटे दुख मिटा, खूब चले दो आप, सुख की इच्छा के बिना दुख हो नहीं सकता, दुख किसका नाम है, सुख की इच्छा का नाम ही दुख है, और दुख कोई चीज नहीं है, सुख की इच्छा नहीं हो उसका दुख नहीं होता। जैसे आपके पास बहुत सी चीजें नहीं है परंतु उसकी इच्छा न होने से उसके अभाव का दुख नहीं है, लोग सुनते अभाव का दुख है, हमारे पास वस्तु नहीं है, रुपया नहीं है, बेटा पोता नहीं है, हमारे घर नहीं है, हमारा अन्न नहीं है, नहीं का दुख है, नहीं का दुख नहीं है, नहीं है उसकी इच्छा है, कामना है, चाहिए हमारे, वो चाहिए इसमें दुख है, कभी अभाव का दुख नहीं है। अभी आपके पास में भोजन नहीं है तो भोजन का दुख है, नहीं होने का दुख है क्या, अभी मानो अभाव मात्र में दुख नहीं है, इच्छा करते हैं चाहना करते हैं वो चीज नहीं होती दुख होता है, और चाहना करने से चीज मिल जाती, ये कायदा नहीं है। दुख दुख होगा ये कायदा है, दुखदाई है होने से, दुखदाई मानने से, दुखदाई अनुभव कर लेने से, केवल दुखदाई है। बढ़िया से बढ़िया दुख ही दुख है, केवल सुख का तो है बहम और दुख का है असली अनुभव। बहम मिट जाए ठीक हो जाए।
जो
नहीं रहेगा सब भगवान की संग में नहीं रहेगा,
अपने
आप दूर जाएगा, प्रभु की कृपा से दूर हो जाएगा। भगवान
दिनांक 12/8/1980 को हुआ और अब 13/8/1980।
हरे शरण
कैसे आता है श्लोक? भगवान के हम शरणागत हो गए हैं, उस शरणागत के लिए वैष्णव शास्त्रों में लिखते हैं कि भगवान के शरण हो तो सबसे पहले भगवान के अनुकूलता का ही संकल्प करें, भगवान से विरुद्ध हम न चलें। क्योंकि जिसके शरण होते हैं, जिसका आश्रय लेते हैं, अवलंबन लेते हैं, तो उसके प्रतिकूल होने से उनका अवलंबन कैसे होगा? तो भगवान के अनुकूलता का ही संकल्प करेंगे, जो भगवान चाहे जैसे हम काम करेंगे, भगवान की आज्ञा भगवान के मन के विरुद्ध कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा सबसे पहले संकल्प होना चाहिए। और प्रतिकूल इसी करें, हम जो प्रतिकूल वो नहीं करेंगे, ये दोनों मिलकर के एक बात हो जाएगी। मानो जो भगवान निषेध करते हैं वो काम नहीं करेंगे, विरुद्ध करते हैं वो करेंगे। तो भगवान के अनुकूल बनना प्रतिकूल नहीं बनना है, ये बात होती है तो शरणागति होती है। अगर अनुकूल नहीं चले प्रतिकूल चलते रहे तो शरणागति नहीं होगी। इस बात इन दो बात की पहले आवश्यकता है, फिर वो अनुकूल होने से भगवान हमारी जरूर रक्षा करेंगे, ये विश्वास होगा। तो भगवान सर्वसमर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं और परम दयालु हैं, ये तीन बात भगवान में हमारे विश्वास की हो जाए। तो सर्वज्ञ होने के नाते हमारी अवस्था को जानते हैं और हमारी कमी है उसमें दयालु होने से वो पूर्ति करेंगे, और पूर्ति करने की सामर्थ्य होने से सब कुछ कर सकते हैं, वे सब कुछ कर सकते हैं हमारी पूर्ति करेंगे। तो दयालु है और सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है। इसमें समर्थ हो और दयालु नहीं हो तो वो हमारे क्या काम का? और समर्थ भी हो दयालु भी हो और हमारे दुख को जाने ही नहीं तो क्या पता। तो ये जो विश्वास है भीतर में कि वो दयालु है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, इन बात से रखी शरीर विश्वास है, हमारी जरूर रक्षा करेंगे, ये विश्वास हो जाता है। और विश्वास होने से फिर गोपित्व वर्णम तथा उसको स्वीकार कर लें, अब हमारे रक्षा हमारे हैं ऐसा पक्का मान लें, तो रक्षा करने वाला है, इस बार हमारे रक्षा करने वाला भगवान है। जैसे मीनू भाई ने कह दिया, मेरे तो गिर धरो ऊपर दूसरे तो उन्होंने कोई जाके सिर मगर गुम तो मेरे पति सोई, ऐसे भगवान का संबंध जोड़ दिया और संबंध के बाद भगवान रक्षा करेंगे। अपनी चीज को हरेक ठीक रखता है तो भगवान के हम हो गए तो भगवान हमारी रक्षा विशेषता से करेंगे। ऐसे जीव मात्र को भगवान ने अपना रखा है, सबकी रक्षा करते हैं, सबका भला वो जैसे ही करते हैं। भगवान की अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थिति जीवों के हित के लिए ही भगवान करते हैं, परंतु शरणागत वास्तव पुरुष है उसके भगवान को पहचान लेता है और अपना रक्षक है ऐसा चुन लेता है। तो रक्षक हमारे ये निर्धक हो जाता है, निस्संग हो जाता है, भय रहित हो जाता है, चिंता रहित हो जाता है साधक, तो वो रक्षा करेगा तो हमारे किस बात की चिंता, हमारे किस बात का भय है, किस बात का शोक है, हमारे किस बात की कमी है, सब तरह से वो रक्षा करेगा। ये विश्वास करके उसे स्वीकार करें वो रक्षक है हमारा। और आत्मनिक्षेप कार्य अपने दो चीज ये है कि सब कुछ भगवान ने अर्पण कर दिया, अब रक्षा करना भी हमारी क्या रही, हमारी चीज नहीं रही, कोई भगवान की है, हमारी वस्तु कहलाने वाली कुछ नहीं, सब भगवान की है, अपने अलग रहा ही नहीं। भगवान से अपने को अलग मानता है तो अपनी रक्षा है, अपनी वस्तु है वो अलग मानता है, अपने भगवान से अलग मानता ही नहीं, सब कुछ उसे अर्पण कर दिया, रख दिया अथर्व जैसे किसी के पास रखे, इसी तरह से अपने कहलाने वाले शरीर इंद्रियां मन बुद्धि ये और कुटुम्ब परिवार घर जितने ही है सब के सभी भगवान के अर्पण कर दी। और आत्मनिक्षेप कार्य करेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, सामर्थ्य जितनी भगवान की है भगवान की करेंगे, अपने में कोई अलग ताकत नहीं, अलग कुछ करने की कोई योग्यता नहीं, कोई बल नहीं, कोई विद्या नहीं, कोई बुद्धि नहीं, ऐसा कोई पद नहीं, ऐसी कोई योग्यता नहीं जिससे हम कुछ अपना कर सकें। हम तो भगवान के अधीन है, सर्वथा भगवान की कृपा से ही हुआ है, हो रहा है, होगा। केवल उनके सन्मुख हो जाए, भगवान के शरण हो जाए तो भगवान विशेषता से काम करेंगे, नहीं तो सामान्य रीति से परम तो सबका ही करते हैं, परंतु शरणागत होता है उसका भगवान के यहाँ दरबार में विशेष आदर है। भगवान कहते मेरी दास पर बड़ी प्रीति रहती है, सब कोई आदमी है, कोई भी क्यों न हो उसके अनुकूल चलता है उस पर वो ज्यादा रहता है, प्रतिकूल चलने वाले की बजाय। तो भगवान के संकल्प भगवान के भी अनुकूल पर निकलने वाला है, हमारा और कोई अनुकूल का प्रतिकूलता नहीं है, और किसी ने रक्षा करनी है वो रक्षा करेगा, उसको रक्षा करने स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, और किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, और के सामने दीन अधीन होने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से भगवान पर सर्वथा निर्भर हो जाता है और वो शरणागति जाते हैं, ऐसे छह प्रकार की शरणागति है। तो ऐसा होने पर बिल्कुल निस्तंग निर्धक निर्भय सब कुछ हो जाता है, कुछ भी करना जानना पाना बाकी नहीं रहता, ना मरने का भय लगता है, ना जीने की इच्छा होती है, ना करना कुछ बाकी रहता है, ना कुछ पाना बाकी रहता है, करना इतना काम बाकी है, अपना करना है ही नहीं, आज मर जाए तो कुछ करना नहीं है अपना। ऐसे ही मिलने में भी अपने को मिलना चाहिए, कुछ जरूरत नहीं, अपने तो प्रभु हमारे हैं, वो मिले हुए हैं, उसके सिवाय को बढ़िया चीज है ही नहीं। इस वास्ते ना तो कुछ मिल जाए इच्छा रहती है, ना कुछ करें वो करना बाकी रहता है वो इच्छा रहती है, और ना मरने का भय रहता है ना जीने की इच्छा रहती है। सर्वथा निर्भय निसंग भगवान की राजी में रहता है, बिछड़ता है तो प्रभु के चरणों का शरण लेते ही उसकी बड़ी निलक्षण शक्ति मिलती है, भीतर मन में निखरकता आती है कि हम भगवान कहें। दूसरी बात ये ध्यान देने की है कि जीव मात्र उनमें आश्रित रहने की स्वाभाविक ही एक शक्ति है, किसी न किसी का आश्रय ढूंढता है, मनुष्य क्या, पशु पक्षी क्या, वृक्ष क्या, ये भी कोई न कोई आधार ढूंढते, किसी न किसी की आश्रित रहते। तो परमात्मा की आश्रित न होने से अनेकों की आश्रित होना पड़ता है, धन की आश्रित होना पड़ता है, परिवार की आश्रित होना पड़ता है, अवस्था परिस्थिति की आश्रित होना पड़ता है, देश काल वस्तु व्यक्ति की आश्रित होना पड़ता है, क्यों का सहारा लेते हैं, क्यों का सहारा लेकर सबका सहारा लेने पर काम बनता नहीं, वो कोई भी पूर्णता से सहायता कर दे ऐसे है नहीं। तो सहारा लेने की इसकी स्वतः आदत है औरों का सहारा लेने से काम बनता नहीं, क्यों का सहारा लेना पड़ेगा और भगवान का ही सहारा ले लिया जाए तो अपने से सहारा लेने की आदत है वो सार्थक हो जाए और दूसरे के सहारे की जरूरत ही न रहे। वो एक ही भगवान के चरणों का आश्रय लेने से सब तरह की इच्छाएं पूरी हो जाती है, किसी तरह कोई काम बाकी रहता ही नहीं अपना, क्यों भगवान सर्वोपरि परमात्मा ही है और उसी के शरण ले लिया फिर अपने लिए कोई काम बाकी नहीं रहा। यह सलामत है भगवान के हम है, हमारे भगवान है। देखो नहीं जानने पर भी भगवान की तरफ से तो सब जीव भगवान के हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सभी मेरी संतान है, सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, इस बात से सभी मेरे प्यारे हैं। तो भगवान की तरफ तो प्रियता है, ये भजन से तो मान बढ़ता है, अब भगत उसको स्वीकार कर ले कि मेरे भगवान है तो ये स्वीकार करते ही वो ठीक हो जाता है। नहीं तो बात यह है कि छोटा तो बड़े के अधीन हो जाए, पर बड़ा नहीं माने तो छोटे केवल के अधीन होने से काम नहीं बनता। पर हमारे यहाँ प्रभु ने तो संपूर्ण जीवों को छोटे बड़े कैसे ही अपना मान रखा है, अब ये जब भगवान के सन्मुख हो जाएगा तो काम बन जाएगा, आधा ही काम करना है। परमात्मा ने तो जीव मात्र को अपना मान रखा है, हम भगवान को अपना मान लें बस, फिर बड़ा भारी लाभ होगा, लाभ के से सदा के लिए मिल जाएगी, जितना धन मिलेगा ऐसा काम हो जाएगी हो जाएगी सब सदा के शांत हो जाए। इस बात को भाई आश्रय लेना है तो बड़े का ही लेना चाहिए, मामले लेके आश्रय ले उस प्रभु के चरणों का आश्रय ले लें और ये शरण हो जाएंगे। सीधा रास्ता है। दूसरी बात एक दीजिए जाए तो ये जितनी चीजें मिली है संसार की ये मिली हुई है विसरने वाली है, ये बात विशेष ध्यान देंगे। अभी भगवान की शरणागति सुगमता से हो जाती है, जितनी चीजें हमारे पास हमारी क्या लाने वाली सब मिली हुई है, शरीर मिला हुआ है, मन बुद्धि इंद्रियां मिली हुई है, प्राण मिले हुए हैं, कुटुंब मिला हुआ है, घर मिला हुआ है, ये मिला है पहले का और विसर जाएगा, हमारा रहेगा नहीं। तो उनके साथ मोहित होकर के इनको रखना चाहते हैं, मिट न जाए चिंता करते हैं, तो कोरा दुख दुख भले ही कर लो वो तो मिटेगी, वो तो जाएगी जाने वाली है उसमें। और आप रहते हो अभी, आप अनुभव कर सकते हो बचपन से अभी तक आप तो वही रहे, सही बदल गया, देश काल बदल गया, हमारे देश देश संसार में जितना परिवर्तन हुआ है ऐसा एक जीवन में परिवर्तन इतना परिवर्तन नहीं आया, राज्य के राज्य परिवर्तित हो गए, विलायतों में गिरोबंदी हुई, कितना परिवर्तन हो गया, स्वभाव लोगों कितना परिवर्तित हो गया, इनकी चाल कैसे बदल गई, क्या चाल थी क्या तीन लोग चाल तीन हो गई, ऐसे परिवर्तन जितना हम लोगों ने देखा है ऐसा इतिहास में किसी को देखने का ऐसा मिला नहीं बैठा, तो ऐसा परिवर्तन करके देखना चाहिए, संसार का भरोसा नहीं रखना पर भगवान का भरोसा। जाएंगे पूरे चरणों के चरण हो जाए तो सब काम भाई जाएंगे तो करेंगे। ये बात अब इसमें कोई प्रश्न हो तो बोलो। मेरे भाई ने कहा कि मेरे तो गुजरों को पालतू करो न कोई जाके फिर मोर मुकट जा मेरे पति सोए उस प्रभु को अपना स्वीकार करें। सच्ची बात है गलती हुई कि संसार को अपना मानते हैं। अरे भाई जिसने संसार दिया उसको तो अपना मानते नहीं दी हुई चीज को अपनी मानती वास्तव में तो मिली हुई चीज अपनी नहीं है वो देने वाला है वो अपना है अहेतु कृपा करने वाला है तो वो अपना है अपनी ये संसार नहीं है। सिद्ध बात तो ये होनी चाहिए पर ये हो गया कि संसार को अपना मान लिया अपना मानने की जगह थी भगवान को तो संसार में रोक ली वहां तो संसार में आपने लगाई उसको निमंत्रण देकर अपने भर्ती कर लिया। अब भगवान को कौन देखा कौन भगवान को चाहे कहाँ चाहे मन में तो कनक काम ने आदि भोग और संग्रह पड़ा हुआ है। दोनों ही गए साथ ही और क्या भगवान सच्ची बात यह है अपना संसार नहीं है भगवान अपना है। देखो संसार दुख देना भी कहना उस समय तो संसार अपना नहीं है ये बात दृढ़ कर ले और अपने कुछ भय लगे संकोच हो क्या होगा क्या नहीं ऐसा होने भगवान अपने ऐसा होने नहीं जिस समय जैसी वृत्ति हो वैसा कर ले तो बात दोनों ही ठीक है संसार अपना नहीं है भगवान अपने है पर मनुष्य जो नहीं है उसको उपार्जन करने में बात नहीं मानता है उसे लेने में बात भी नहीं मानता और बात भी है उसको लेने में है नहीं है लेने में क्या बात भी है आज इनके नहीं है कल हो गए तो भी चले गए चीजें हो गई चलेगी नष्ट हो गई प्रभु अपना है संसार अपना नहीं है। इस बार भगवान के चरणों में शरण हो जाए
महाराज जी शरणागति की भावना कृपा साध्य है या साधक
साधक सन्मुख होना काम तो है साधक का पूर्ण काम करना है भगवान का। यह पूछते हैं कि शरणागत होना ये साधक का काम है भगवान का है तो भगवान की तरफ सन्मुख होना काम तो है भगत का फिर उसको पूर्ण करना काम है भगवान का। कारण क्या है कि भगवान की अपनी तरफ से तो कृपा करते ही रहते हैं निरंतर ये ही भगवान से विमुख हो गया संसार के सन्मुख हो गया तो सन्मुख हो गया संसार के इस बार से संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख होने की जिम्मेवारी इसकी आ गई क्योंकि इसकी जिम्मेवारी थी नहीं तो संसार को अपना मानता इस बार से संसार को न मान भगवान को न माने ये जिम्मेवारी खुद जीव की है अगर संभालेंगे भगवान। नारायण नारायण नारायण
ये वचन संबद्ध 2040 से कर भगवावती नौमी को प्रातःकाल हुआ और अब 13/8/89 प्रातःकाल स्थिति के बाद
शरणम् हरे शरणम् हरे शरणम् हरे
नारायण 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 राम 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 राम
राम राम
एक बात है खास वो उस समय में मैं थोड़ी सी कर ली है और समझ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, और ध्यान दे ठीक समझे तो समझ में भी आ जाएगी। मनुष्य जब तक अपने लिए कुछ करना है तब तक वास्तविकता को नहीं जान सकता। खास बात है, और करता है वो अपने लिए ही करता है निरंतर, तो वास्तविकता को नहीं जान सकता। ऐसी दृष्टि बात है, तो अपने लिए करने से कुछ न कुछ मेरे को मिलेगा, मेरे को लाभ होगा। यहाँ ही गलती है, पूरी गलती है। यहाँ इस पर थोड़ा सा विचार करें, अपने लिए करने से मेरे को लाभ मिलेगा, कुछ कुछ मिलेगा, इसका अर्थ होता है कि वो लाभ अभी नहीं है। अभी नहीं है वो मिलेगा तो अंत में वो नहीं रहेगा, क्यों? उत्पन्न होने वाली वस्तु का अनुत्पन्न होने वाली वस्तु के साथ नित्य निरंतर संबंध रह ही नहीं सकता। तो आप स्वयं अनुत्पन्न तत्व हैं, शरीर आपका उत्पन्न होता है, मन बुद्धि इंद्रियों के साथ आपका संबंध होता है, परंतु आप उत्पन्न होने वाले नहीं है। जीव भूत सनातन का ईश्वर अंश जीव अविनाशी का चेतन अमल सहज सुख राशि, तो स्वयं आप सहज सुख राशि है, उनके लिए जब किसी चीज से लाभ होगा हमें सुख मिलेगा, दूसरे से मेरे को कुछ मिल जाएगा, करने से मेरे को मिलेगा, दूसरा कोई दे देगा तो निहाल जाऊंगा, ईश्वर दे देगा, गुरु जी दे देंगे, महात्मा जी दे देंगे, हमारा पुरुषार्थ दे देगा, हमारी अकलमंदी दे देगी, हमारी चतुराई कुछ दे देगी, हमारा पुरुषार्थ कुछ दे देगा। ये जब तक लेने की इच्छा होती है तब तक वास्तविकता से दूर रहता है। ये खास बात, तो आप कौन है? आप परमात्मा का साक्षात अंश है, उसमें कमी नहीं है जो मिलने से पूर्ति होगी। वो आप होकर आपने शरीर के साथ इंद्रियों के साथ मन बुद्धि के साथ एकता मान ली, अब इसमें कमी है, वो अपने में कमी मानने लग गए, उस कमी की पूर्ति को अपनी पूर्ति मानते हैं, तब तक आप अपने स्वरूप को जान नहीं सकते। तुम सही कमी को अपनी कमी मानते हैं तो सही के साथ एकता आप मान सकते हैं, सही से अलग अपना अनुभव नहीं कर सकते। और जब तक शरीर से ही अलग में ये अनुभव नहीं होगा तब तक साधना में कैसे चलेगा? वो जो कुछ करेगा करेगा अपने लिए करेगा, अपने लिए करेगा, अपने पाने के लिए। तो करना बाकी है और पाना बाकी है, ये सब होता स्वतः। और पाना बाकी क्यों है कि जो आपने पकड़ा इस बार से पाना बाकी है। एक बड़ी मार्मिक बात है कि पैसे वाले के पैसे का घाटा होता है, जितना पैसा अधिक है उतना पैसे का घाटा ज्यादा है, जितना पढ़ा लिखा है उतनी पढ़ाई उसके बहुत बाकी है, बिल्कुल अपढ़ है उसकी पढ़ाई बाकी है ही नहीं, पढ़ने की इच्छा हो गया उसकी बाकी है, ऐसे निर्धन के पास में धन की जरूरत ही नहीं, कभी आवश्यकता है ही नहीं, वो धन की जरूरत मानता है तो उसे घाटा है, परंतु उस घाटा छोटा है और धनी के बड़ा बड़ा घाटा है। मानो संसारिक वस्तु जितनी आपको मिलेगी उतनी आपकी कमी बढ़ेगी, दरिद्रता बढ़ेगी, घाटा बढ़ेगा, अभाव बढ़ेगा। बात यह है, एकदम प्रत्यक्ष बात है, साधारण आदमियों के लाख दो लाख का घटा कभी होता ही नहीं, और धनी आदमियों के लाख दो लाख तो घटा कई बार होता है, करोड़ों का घटा कम होता है, करोड़ों अरबों है उनके करोड़ों का घटा होता है, और घटा रहता है इतना बाकी रहता है। साधारण आदमी करोड़ की जरूरत रहती है, लाख रुपये की जरूरत नहीं, उनका घटा थोड़ा होता है, 2000 10000 20000 का, और वो भी हजारों ऐसे उसके हजारों का घटा है, सैकड़ों उसके सैकड़ों का घटा है। ये बात आपने कलम आवे ना आवे तो पता नहीं, बात एकदम सच्ची है, क्योंकि कारण ये परमात्मा का स्वयं आप अंश होते हुए जब प्रकृति के अंश को पकड़ लेते हो तो प्रकृति के अंश में कमी है वो अपनी कमी मालूम रहने लगती है। जो जो प्रकृति के नाशवान पदार्थों को अपना अपना समझते हो क्यों त्यों घाटा कम घाटा अधिक मालूम देगा, कमी अधिक मालूम देगी, दरिद्रता अधिक मालूम देगी, और वहम एक वक्त पदार्थ मिल जाए दरिद्रता मिट जाएगी, ये बड़ी बीमारी है। अब ये क्या करें बताओ, कोई ख्याल करूँगा क्यों अपने लिए कुछ समझता है, क्यों उसे घाटा पड़ता है। इस तत्व को ठीक समझने के लिए कोई बोलो, आप शंकर बोलोगे जिसकी शंकर है, ठीक समझने के लिए
नहीं हुआ कहते सारा पुरुषार्थ अस्वाभाविकता को बढ़ाने के लिए किया जाए, ये पुरुषार्थ भी तो करते हैं,
पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए पर दूसरों के लिए करना चाहिए, अपने लिए नहीं। कभी खाली तस्मात अशक्ता सततं कार्यं कर्म समाचर, मशीन की तरह काम करना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, खाना पीना करना इस वास्ते जो काम कर सके ऐसा उत्साह पूर्व करना चाहिए, साधना करो, व्यापार करो, धंधा करो, कुछ भी करो करो, साधना अपने लिए होती है तब तक साधना पूरी नहीं होगी, ये बात खास मर्म समझने की है। हाँ जी, क्या हाल करो आप साधना क्या करते हैं पहले बताओ, फिर बताओ। हम ध्यान करते हो तो वो ध्यान आप मन बुद्धि के लिए करते हो कि अपने लिए करते हो, तो अपने लिए नहीं है। अब बोलो, अगर बोलो मार्मिक बात को समझना है,
मन बुद्धि से अपने को अलग करना है,
अब मन बुद्धि को अपने से अलग करना है तो अलग करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है क्या? गहराव तो क्यों सोचोगे तो ठीक तत्व तो मिलेगा, नहीं तो अटपटी बात है, समझी नहीं आएगी। महाराज, मन बुद्धि प्रकृति का कार्य है, आप परमात्मा के अंश हैं, आप अपने को अलग स्वीकार कर लें, अनुभव कर लें, मन बुद्धि को अलग अनुभव करें, ये है उनके त्याग का उपाय। जो विवेक ठीक असली तरह से प्रकृति का कार्य अलग है, आप परमात्मा का स्वरूप अलग है, इस विवेक की जरूरत है। ज्ञान किस लिए जब करते हैं तो किस लिए करते हैं कि जो हमारा संबंध विच्छेद हो जाए, अपने लिए संबंध विच्छेद अपने लिए नहीं होता है, अपने में कमी है क्या? ग्रंथि है तो वो ग्रंथि कहाँ है, किस जगह तोड़नी है? सत और असत की है, चित और जड़ की है, आनंद और दुख की है, नाश और अविनाशी की है। तो अविनाशी असत जड़ दुख का त्याग करना है, अब तो तोड़नी कैसे है ग्रंथि का? तो ये प्रकृति है तो आप इनसे अलग हैं, ये बात सच्ची है झूठी? सच्ची है तो अलग का अनुभव करो, ये है तोड़ने का उपाय। अनुभव उपाय करने के लिए साधना करो, बड़ी अच्छी बात है, पर अलग अनुभव करने के लिए साधना है तो वो अलग करने के लिए है, अपने लिए नहीं है। खूब समझे इस बात को, तो अलग करने के लिए वो अपने लिए नहीं है। झाड़ू लगाया जाता है वो पूरे करकट के लिए लगाया जाता है, मकान के लिए नहीं है, छत के लिए नहीं है, दिखता है उसके लिए है, कूड़ा करके हटाने के लिए, न कि उस आंगन को कोई निर्मित करने के लिए, उसको बनाने के लिए नहीं है। उसके बनाने के लिए नहीं है झाड़ू। ऐसे बुद्धि से विचार करो तो जड़ता के त्याग करने के लिए जो कुछ है पुरुषार्थ है, आपके लिए नहीं है। ये बहुत समझने की जरूरत है। आप अपने लिए करेंगे तो आपके उत्पन्न होने वाली वस्तु को आप चाहना करोगे अपने लिए, तो करने से तो कोई उत्पन्न होगा, कोई परिस्थिति उत्पन्न होगी, कोई अवस्था उत्पन्न होगी, कोई कोई पदार्थ उत्पन्न होगा, कोई योग्यता उत्पन्न होगी करने से, और क्या होगा बताओ? तो वो आपके क्या काम की होगी? जो उत्पन्न होगी वो तो नष्ट हो जाएगी।
संबंध को गार्ड करने के लिए जो ध्यान करो,
तो ध्यान मत करो, पुकारो 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 बैठे गए पुकारो, हे नाथ पुकारो। नहीं, आप उनको दूर करने के लिए करते हो तो पुकारो प्रभु, और पुकारो प्रभु के साथ गाढ़ता करने के लिए प्रभु को पुकारो। पर करने से आपको क्या मिलेगा? आपको तो प्रभु मिलेंगे मुफ्त में, करने से नहीं मिलेंगे, मजदूरी से नहीं मिलेंगे परमात्मा। एकाग्रता लाभदायक है, तो एकाग्रता लाभदायक किस रूप में है? खूब समझ कर बोलो। एक जगह लाने से क्या लाभ होगा? मन की स्थिरता से क्या फायदा होगा? इसमें जुड़ना है कि एकाग्रता करनी है? और एकाग्रता जुड़ता ही नहीं, ये तो आपने माना है। मैंने इस विषय का बहुत विजन किया, बहुत बार कहा है, फिर कहता हूँ, आप ध्यान दो, चित्त की एकाग्रता की इतनी जरूरत नहीं है बाबा, जितने चित्त में पदार्थों का महत्व बड़ा है, इस महत्व के हटाने की जितनी जरूरत है, जितनी चित्त एकाग्रता की जरूरत है ही नहीं। तो आप लोगों फंस गई ये बात, और मैं जा रहा हूं, चित्त में जो महत्व है रुपये पैसों का, पदार्थों का, भोगों का, मान का, आदर का, वो आदर है मन में, उसको हटाना है। इसलिए हटाने का जो महात्म्य है वो एकाग्रता का महात्म्य हो ही नहीं सकता कभी। आप कृपा करो, इस बात को आप समझो, एकाग्रता का इतना महत्व नहीं है जितना उसमें जो राग है, पदार्थों की आवश्यकता है, भोगों की इच्छा है, ये जितने हटाने की जरूरत है, ये तो संसार के साथ संबंध जुड़ा हुआ है, इसको तोड़ना है। सतर समाधि अपने स्वरूप को तो सुबह है, तो अपने लिए करना नहीं है, अपने लिए वो होता है। कैसे है कि हम जड़ता के संबंध विच्छेद करके चिन्मयता को प्राप्त कर लें, तो चिन्मयता अप्राप्त थोड़ी है बाबा, जड़ता को पकड़ना है, ये छोड़ना है, और सार तो यही है। तो मैं और क्या रोता हूँ, ये रोना छोड़ रहा हूँ कि चित्त की एकाग्रता इसमें कारण नहीं है बाबा, आपके भोगों की इच्छा है, ये बाधक है, बाधा है, कहीं करते कहीं हो दूर उद्योग कहीं करते हो, कैसे होगा? और विशेष उपाय पुकारो भगवान को, निकल जाएगा, अथवा विचार के द्वारा ये हमारा नहीं है ये निकल जाएगा। दो चीज है, तीन उपाय है, चाहे तो विचार के द्वारा जड़ के साथ में संबंध विच्छेद करो, सिद्धि मिट जाएगी, अथवा प्रभु को पुकारो तो उन्हें कृपा से मिट जाएगी, अथवा जो करो जो दूसरों के लिए करो अपने लिए किंचित मात्र मत करो निकल जाएगी। ये तीन उपाय है, ऐसा अच्छा लगे तो कर लो। जो पसंद करते हो उसमें जो शंका हो तो पूछो, दूसरों के हित ही हित करना, दूसरों का सबका हित कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो, शरीर से, मन से, वाणी से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, मन से, चित्त से, दूसरों का भला ही भला हो, ये प्रवाह दूसरों के हित का हित केवल हो जाए, आपको कल्याण हो ही जाएगा उसी क्षण। केवल दूसरों के हित की तरफ प्रवाह होते ही जड़ता का संबंध विच्छेद हो जाएगा। अहंकार को भी छोड़ना ही बाबा, उसको पकड़ना, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, तो गुरु होता है, समझे नहीं। अहंकार तो हित में लगना है, अपने में अहंकार कैसे आएगा? दूसरों की सेवा अहंकार पूर्व करते हैं कि नहीं? तो अहंकार दूसरों के लिए है कि हमारे लिए है? दूसरों के लिए, मैं दूसरों के लिए ही हूँ, दूसरों के सेवक हूँ, दूसरों की सेवा करना है, सेवक बनना नहीं है, सेवा ही सेवा करनी है, सेवक नहीं बनना है। सेवक बनते हो तो अपन खाते हो, दूसरों के लिए हुए ही नहीं, वो आप ही नहीं हुआ। सेवक बनो केवल सेवा के लिए, सेवा के लिए सेवक बनो, सेवक सेवक बनने के लिए सेवा मत करो, सेवा करने के लिए सेवक बनो, केवल सेवा के लिए। नारायण नारायण नारायण, ये आज एक पाढ़ा डाल दिया, इसको याद करो, अपने लिए नहीं करना है, ये सोचो, फिर कल पूछो खूब रहती गति से। बहुत ही बढ़िया बात है, मामूली बात नहीं, करो सत्संग, भूखाल करो, कौन मना करता है।